अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वमिनन नासी, और लोगों में से कोई ऐसा भी है, मैं यकूलू, वो कहता है, आमन्ना बिल्लाही, हम अल्लाह पर ईमान लाए, वबिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वमा हुम बिमोमिनीन, और वो ईमान लाने वाले नहीं है। बाज लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि दर हकीकत वो मोमिन नहीं है। तो ये तीसरी किस्म के लोग हैं। सबसे पहले किस्म के लोग कौन से थे? मोमिनीन, मुत्तकीन। दूसरे कौन से थे? काफिर। अब तीसरे कौन से हैं? मुनाफिक। हैं दोनों ही इनकार करने वाले, काफिर और मुनाफिक दोनों ही इनकार करने वाले हैं। काफिर खुल्लम खुल्ला इनकार करने वाले हैं, और मुनाफिक जो है ना, ये सबसे ज्यादा दीन को नुकसान पहुंचाते हैं। ये वो हैं जो चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, जो मौका साज होते हैं, जो जमाना साज होते हैं, जो हालात के मुताबिक अपना रुख बदलते रहते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर लोगों में से कोई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और वो मोमिन नहीं है। ये कितनी बड़ी ही अफसोसनाक खबर है जो सुनाई जा रही है, ये बड़ी ही दर्दनाक खबर है कि अल्लाह ताला ये ऐलान कर रहे हैं कि ऐसे लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं, जिनके कॉल में और फेल में तजाद है, जिनके कहने में और करने में जो है वो फर्क है, और इन्हीं को जो है वो मुनाफिक कहा जाता है। और दरअसल असल में ईमान जो होता है वो क्या है कि वो इंसान के अंदर एक तब्दीली का नाम है, उसके किरदार के अंदर जो है वो तब्दीली का नाम है। तो जब इंसान जो है जो कहता है उस पर अमल नहीं करता, तो इसका ये मतलब है कि वो शख्स जो है वो सच्चा शख्स नहीं है। तो यहाँ पर जो है यही बात बताई जा रही है। और आप ये भी देखें कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें ऐसी अहदीस पता चलती हैं कि ईमान लाना जो है वो इससे क्या मुराद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ईमान क्या है, आपने फरमाया ईमान नाम है सबर का और समाहत का। तो सबर तो समझ में हमें आता है ना कि हम जिंदगी के मुख्तलिफ मौके के ऊपर बर्दाश्त करें, है ना, और सबर करें। और समाहत किसे कहते हैं? समाहत के मानी क्या है कि इंसान जो है उसके अंदर आला जर्फी हो, उसके अंदर नरम खुई हो। तो आला जर्फी और नरम खुई जो है वो क्या है कि वो बड़ी बर्दाश्त से आती है, इतनी आसानी से नहीं आती। बहुत सी जो है वो अनकही बातों को, जो है वो गैर जरूरी बातों को जो है इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अगर हम ऐसा करें तो क्या है, ये ईमान है। इसी तरह से जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला अब्दुल कैस की नुमाइंदगी करने वाले लोगों से पूछा, जानते हो अल्लाह वाहिद पर ईमान लाने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा, अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर इल्म रखते हैं। आपने फरमाया, ईमान ये है कि आदमी इस हकीकत की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज ठीक तरीके पर अदा करे, और जकात दे, और रमजान के रोजे रखे। मिश्कात की यह हदीस है। तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे भी करने के काम बताए जा रहे हैं। तो अब ये लोग क्या करते हैं जो मुनाफिक हैं? वो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, लेकिन अल्लाह पर और आखरत पर जो है वो ये लोग ईमान नहीं लाए। तो आखरत पर ईमान लाने का क्या मतलब है? क्यों अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ये आखरत पर जो है ये ईमान नहीं लाए? आखरत जो है, जो बाद की जिंदगी है, इस पर ईमान लाने का क्या मतलब है कि इंसान जो है वो उसकी फिर तैयारी करे, इंसान आखरत के दिन से जो है वो डरे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें आखरत पर ईमान लाने के बारे में भी जो अहदीस मिलती हैं, उनमें से एक बड़ी ही अहम हदीस है जिससे हमें ये बात पता चलती है कि हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐशो आराम और बेफिक्री की जिंदगी कैसे गुजार सकता हूँ, जबकि हाल ये है कि इसराफील अलैहि सलाम सूर मुंह में लिए, कान लगाए, पेशानी झुकाए इंतजार कर रहे हैं कि कब हुक्म होता है सूर फूंकने का। सूर जो है उस बगल को कहते हैं जिसके जरिए फौज को खतरे की खबर दी जाती है, जैसे होता है ना कोई आवाज निकाली जाती है या उन्हें इकट्ठा करने के लिए बजाया जाता है। तो कयामत के सूर की हकीकत कौन जान सकता है? لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہاں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ پڑھتے رہا کرو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ بھی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ ترمذی کی حدیث ہے. تو اس کو پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ جب زندگی میں تم چلو گے، جب اپنی زندگی میں عمل کرو گے تو بہت سی مشکلات آئیں گی، بہت سے فتنے کھڑے ہوں گے، بہت سی آزمائشیں آئیں گی، اور اس موقع پر ایمان جو ہے نا اس کو دامن کو چھوڑ نہ دینا، اس موقع پر مایوس نہ ہونا، ڈپریشن کا شکار نہ ہونا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سچے طریقے سے قرآن اسلام پر سمجھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، تو حالات ہمارا ساتھ نہیں دیتے، واقعات ہمارا ساتھ نہیں دیتے. انسان کی جو پڑی ہوئی ہم پر مصیبتیں ہیں، انسان ہم پر جو باتیں کرتے ہیں نا، ان کو ہم اللہ کی ڈالی ہوئی آزمائشیں سمجھ کر اپنے ایمان سے ہٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں کیا پیغام دیا کہ تمہیں پتا ہے کہ بہت جلدی آخرت اور قیامت آنے والی ہے نا، کہ جلدی جیسے ایک دم کسی کی وقت جو ہے نا سور پھونک دیا جائے. تو تم دنیا میں ایسے کان لگا کے رہو کہ کسی وقت بھی سور پھونک دیا جائے گا، اور جب تم پہ مشکل وقت آئے تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. غزوہ بدر بڑا مشکل وقت تھا، اور اس وقت جب بہت مشکل کا وقت تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جو ہے وہ کودنے کا حکم دیا گیا، ڈالنے کا حکم دیا گیا، اس وقت بھی آپ نے یہ دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، کہ مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا ولی ہے، وہ میرا کارساز ہے، وہ میری ضرورتوں کو پورا کرے گا، وہ میری سچائی کو پورا کرے گا، وہ میری سچائی کو ثابت کر دے گا. تو یہاں پر وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ منافق کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ایمان کو منہ سے لاتے ہیں ان کا ایمان زبان کی نوک سے آگے نہیں بڑھتا. جو ہی جب وہ عمل کرتے ہیں نا اور جب آزمائشیں آتی ہیں، فوراً وہ ایمان جو زبان کی نوک پر ہوتا ہے نا اس کو باہر کر دیتے ہیں. مثلاً منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، نماز ان کے لیے بڑی مشکل ہے. منافقین کی ایک بڑی نشانی ہمیں قرآن مجید سے بھی پتہ چلتی ہے کہ جب وہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں نا تو بہت سستی کے ساتھ آتے ہیں. فَإِذَا قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کیا کرتے ہیں؟ کسالا، سستی کے ساتھ وہ نماز کے لیے آتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فجر کے لیے، عشاء کے لیے نہیں آتا تھا نا تو ہم اس کے بارے میں برا گمان کرتے تھے کہ شاید یہ سچا مسلمان نہیں ہے. اور ہمیں حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منافق پر عشاء کی اور فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے، اور ویسے تو ساری نمازیں بھاری ہوتی ہیں لیکن عشاء کی اور فجر کی نماز خاص طور پر. عشاء میں ہم تھک جاتے ہیں اور فجر میں میٹھی اور گہری نیند، نرم گرم بستر کو چھوڑنا، خوابوں میں سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آنا بڑا مشکل لگتا ہے. سوچتے ہیں بس ابھی تھوڑا سا اور، ابھی تھوڑا سا اور، یہاں تک کہ سورج کی کرنیں جو ہیں وہ باہر نکل آتی ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر، حالانکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں. وہ اللہ پر اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں یہ لوگ ان کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. حقیقت کیا ہے کہ وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس بات کا جو ہے وہ شعور نہیں ہے. تو یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو نہیں پتا، کہ اللہ کو چیٹ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے. اور پھر وہ ایمان لانے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کو دھوکہ دیتا ہے وہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، جو ایمان لانے والوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اور اسے شعور ہی نہیں ہے، اسے سمجھ ہی نہیں ہے، اسے علم ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی غلطی جو ہے، کتنا بڑا گناہ جو ہے، کتنی بڑی بات جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. کیونکہ ان کا ایمان ایسا ایمان ہے جو جھوٹا ایمان ہے. ان کے دلوں کے اندر ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے. جب انسان ایسا کرتا ہے نا، بعض لوگ اپنی بات سے مکر جاتے ہیں، بعض اپنی بات کو تبدیل کر لیتے ہیں، بعض جو ہے وہ یعنی جیسے کچھ منافقت زبان کی ہوتی ہے، کچھ جسم کے اعضاء کی ہوتی ہے. तो ये दरअसल ये सारी एक बीमारी की वजह से है। फी कुलूब बेही मरद, इनके दिलों के अंदर बीमारी है। फजादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ने इनकी बीमारी को ज्यादा कर दिया। फजादा फा पस ज्यादा, ज्यादा कर दिया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। वलहुम अजाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। बिमा कानू यकज़िबून, इस वजह से जो ये झूठ बोलते हैं। तो कौन सी बीमारी है उनके अंदर? कंट्राडिक्शन की, मुनाफकत की, दो रुखेपन की, दो रुखापन है ना। मुनाफिक की मिसाल ऐसी भी है कि जैसे वो आसान आसान चीजों को लेना चाहता है, वो चीजों को करना चाहता है जिससे उसको फायदे हो। जहां उसको लगे कि अब मुझे मुश्किल होगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वहां वो कहता है कि नहीं, ये इस्लाम मैं नहीं कर सकता, ऐसे इस्लाम पर तो हम अमल नहीं कर सकते, फायदा उठाना चाहते हैं। ऐसे लोग जो है वो ज्यादातर जो है वो फायदा मंद होते हैं। और इस्लामी तारीख में देख लें कि मुनाफिकों ने इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया। काफिर मक्का में थे, कुफर किया उन्होंने, तो पता था कि काफिर कौन है। मदीना में आए तो उनसे जंग के लिए तैयार थे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मुनाफकत जो है, जब लोग मुनाफकत करते हैं तो उसका क्या नतीजा होता है कि इंसान बाजू का धोखा खा जाता है उनसे ना, पता नहीं चलता कि ये मेरा साथी है या मेरा दुश्मन है। आप देख ले, टीपू सुल्तान जैसा बहादुर शख्स शहीद हुआ, तो अंग्रेज नाम सुनकर टीपू सुल्तान का उससे डरते थे ना, नाम सुनकर कि शेर आ गया, दियो आ गया। लेकिन टीपू सुल्तान भी मैदान के मुकाबले में नहीं उनको शहीद, यानी वो मरे, बल्कि क्या था कि मुखबरों ने, मुसलमानों में से किसी ने अंग्रेजों को कुछ लेके उनकी मुखबरी कर दी थी कि इस वक्त वो कहां पे हैं, और फिर उनको जो था ना वो खत्म हो गए। तो हाँ, तो क्या है कि मीर सादिक और मीर जाफिर, ये भी हमारी इस्लामी तारीख में बड़े पक्के मुनाफिक रहे हैं, जैसे अब्दुल्ला बिन उबई जैसे लोग। तो इसी तरह बगदाद जो है, इसमें भी मुनाफिक जब आए तो फिर सकूते बगदाद हुआ, सकूते ढाका, यानी ढाका गिरा या बगदाद गिरा। या हिंदुस्तान में जो जंग थी 1957 की, 1957 की, उसमें मुसलमानों को जो नुकसान हुआ उसकी भी वजह ये थी कि मुनाफिक मुसलमानों के अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते थे। तो ये हर दौर में पाए जाते हैं, उस दौर में भी और आज में भी। तो उस जमाने में बहुत से लोग ऐसे थे जो रसूल अल्लाह के पास आते थे, कहते थे हम तो आपके साथ हैं, हम आप पर ईमान लाए हैं। जब काफरों से जाके मिलते थे कहते थे कि नहीं। तो अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, दो ऐलान किए खास तौर पे। पहला ये ऐलान किया, वलहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए दर्दनाक अजाब है। दूसरा ऐलान क्या किया कि ये लोग झूठे हैं। झूठ, झूठ किसे कहते हैं? क्योंकि जिस चीज के बारे में अल्लाह ऐलान कर दे कि ये लोग जो है ये झूठे हैं, तो इसमें क्या शक हो सकता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस को अस्मा रजी अल्लाह अन्हा रवायत करती हैं कि हम रसूल अल्लाह के पास एक दुल्हन को लेकर हजूर के घर गए। जब हम आपके घर पहुंचे तो आपने दूध का एक बड़ा प्याला पेश किया, फिर आपने खुद दूध पिया बकदरे जरूरत, इसके बाद अपनी बीवी को दिया। वो जो दुल्हन लेकर गई थी ना सहाबियात, उनको दिया। उन्होंने कहा मुझे ख्वाहिश नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भूख और झूठ को जमा ना करो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि उन्हें भूख लगी हुई है लेकिन तकल्लुफ फरमा रही है, इसलिए आपने झूठे तकल्लुफ से मना किया। और ये मैं और आप भी कसरत से ये झूठ बोलते हैं, है ना। बाजू का तो यही ख्याल होता है कि इनको तकलीफ ना हो और मुश्किल ना हो, या जल्दी में होते हैं तो कुछ लोग तो इतना पक्का झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि खा लिया हुआ है, खा ही लिया हुआ है, पेट बड़ा भरा हुआ है, भूख बिल्कुल नहीं है। तो हमें क्लियर बात करनी चाहिए कि मतलब मोहतात अंदाज में कर सकते हैं कि भी अभी टाइम नहीं है मेरे खाने का, या अभी मेरे लिए मुश्किल है, ये मैं इस वक्त जल्दी में हूं, कुछ भी अच्छे से हम माजरत कर सकते हैं। जिंदगी का ये उसूल बना लीजिए, जिंदगी का ये तरीका बना लीजिए कि कोई भी बात हो झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, ये बहुत अहम बात है। इसी तरह सुफयान रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना कि यह भी बहुत बड़ी खयानत है कि तुम अपने भाई से कोई बात कहो और वो तुम्हारी बात को सच समझे, हालांकि तुमने जो बात उसे कही वो झूठी थी। तो ये अबू दाऊद की रवायत है। तो अब आप देख लीजिए कि ये भी झूठ है। और हम बहुत सी बाज़ुकात ना हम बात में बहुत मुबालगा आई करते हैं, जैसे हमने कहीं कोई चीज देखी तो कोई किसी को लड़ते हुए देख लिया, अब हम आदत है चूंकि बहुत बात करने की, हम अब दूसरे को जाके बताते हैं, बताने में मुबालगा राय कर देते हैं, क्या बताऊं कि कैसे मारा, क्या बताऊं कि फिर क्या हुआ, है ना। तो ये भी झूठ है, क्योंकि इससे हमें क्या पता चला कि तुम अपने भाई से वो बात कहो और वो तुम्हारी बात को सच समझे, हालांकि तुमने जो बात उससे कही वो झूठी थी। कोई भी चीज, खाना लजीज था, चीज बड़ी खूबसूरत थी, मैं बड़ी मुश्किल में थी, हो सकता है उतनी मुश्किल में ना जितनी बड़ी को मैंने खींचा, बड़ी मुश्किल में थी, है ना, बड़ा मुझे ये होता है ऐसे, तो ये चीज भी झूठ में आती है। तो आप सोच लें कि कैफियत में भी झूठ नहीं होना चाहिए, फीलिंग के अंदर भी, ये भी जो है ये हराम है। इसी तरह एक दिन जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर रजी अल्लाह कहते हैं, वो हमारे घर में तशरीफ रखते थे, मेरी वालदा ने मुझे बुलाया, कहा कि इधर आके मैं तुझे एक चीज दूंगी। तो हजूर ने पूछा तुम उसे क्या देना चाहती हो, वालदा ने फरमाया कि मैं उसे खजूर देना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू देने के लिए बुलाती और ना देती तो तेरे नामाए माल में ये झूठ लिख दिया जाता। अबू दाऊद की ये रवायत है। अब ये देख लें कि ये किस्म, मैं और आप इसमें कहीं मैं और आप शामिल तो नहीं होते बच्चों के साथ। मैं आपको एक बात बताऊं, जो इस्लाम के उसूल है ना वो उसूल है, वो ना बच्चों के साथ जायज है, ना बड़ों के साथ जायज है, ना मुसीबत में जायज है, ना परेशानी में जायज है। जो हराम है वो हराम है, और बिलअमूम हम अपने बच्चों के साथ बहाने बनाते हैं और ये बातें कहते हैं, अल्लाह के हाँ ये झूठ होगा। इसी तरह एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खराबी और नामुरादी है उस शख्स के लिए जो झूठी बातें इसलिए करता है कि लोगों को हंसाए, हंसाने के लिए, खराबी है उसके लिए, खराबी है उसके लिए, खराबी है उसके लिए। आपने 3 दफा ये बात कही। हम अपनी गुफ्तगू को चटपटा बनाने के लिए, हम अपनी गुफ्तगू को मजेदार बनाने के लिए, हम हंसाने के लिए जो है ना वो झूठ बोलते हैं। तो ये चीज भी जो है ये गुनाह है और ये चीज हराम है। तो बात खाने पीने में झूठ की हो, बात के बताने में हो, किसी को देने में हो, या अमली लिहाज से बहसियत मुसलमान झूठ की हो, तो ये मुनाफिकों की खूबी है, और अल्लाह ताला ने कहा कि उनके लिए बड़ा अजाब है। अब मुनाफिकों के लिए अजाबुन अलीम कहा, तो काफिरों के लिए कौन सा अजाब कहा? अजाबुन अजीम, बड़ा अजाब होगा। तो यहां पे अलीम बड़ा ही दर्दनाक होगा है, दोनों ही अजाब, दोनों ही तकलीफ में है। फिर फरमाया और जब उनसे कहा जाता है, वाइजा कीला लहुम, जब उनसे कहा जाता है ला तुफसिदू फिल अर्ध, जमीन में फसाद न करो, قالوا انما نحن مصلحون, तो कहते हैं कि हम तो इसलाह करने वाले हैं। यानी मुनाफिकों की क्या खूबी होती है कि वो फसाद फिल अर्द करते हैं। फसाद फिल अर्द ये इस्लाम कुरान की एक टर्म है, इस्तलाह है। फसाद फिल अर्द जो है इसके क्या मानी है? फसाद फिल अर्द जो है इसके असल मानी है निजाम हक को बिगाड़ना, इस्लाम के निजाम को बिगाड़ना, उसको बिगाड़ने की कोशिश करना। और निजाम हक क्या है? वो कानून जो अल्लाह ताला ने दिया है, अल्लाह के अहकामात, अल्लाह की इबादत, अल्लाह के बताए हुए तौर तरीके, वो जो अंबिया अलैहिस्सलाम लेकर आए, वो जो कुरान पेश करता है। तो ये पूरी कायनात का निजाम अल्लाह के तहत चलता है, मौसमों का बदलना, फलों का पकना, हवाओं का चलना, बारिश का आना और सूरज का तुलू होना, सूरज का गुरूब होना, ये सारा अजरामे फलकी, ये सारा कायनात का निजाम जो है वो अल्लाह के कानून के पाबंद है। किसी का इख्तियार नहीं है कि वो कहे कि नहीं, हर हर जो चीज है वो अल्लाह की अताअत करती है। और अब ये है कि वो इंसान जो कि अशरफ अल मखलूकात में से पैदा किया गया है अल्लाह ताला, उसको ये कह रहे हैं कि तुम जमीन में फसाद ना पैदा करो, क्योंकि मुनाफिक जो है ना, जब वो दो रुखापन इख्तियार करते हैं, जब वो कंट्राडिक्शन करते हैं, जब वो कहते कुछ है करते कुछ है, तो जमीन में फसाद पैदा होता है। तो ये आयतें सिर्फ मुनाफिकों के लिए ही नहीं है, काफिरों के लिए भी हैं। काफिर जब कुफर करता है तो उससे भी जमीन के अंदर जो है वो फसाद पैदा होता है। तो कहा कि जब भी उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना करो, तो वो कहते हैं कि हम तो इसलाह करने वाले हैं, हम तो बड़े खैर खा हैं, हम तो बेहतरी के लिए ऐसा करते हैं, इधर की उधर, उधर की इधर, है ना। तो यहां पे ये इससे ये बात हमें पता चलती है कि یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ بڑے زبردست طریقے سے یہ اعلان کرتے ہیں, اللہ انہم ہم المفسدون ولیکن لا یشعرون, خبردار یہ لوگ فسادی ہیں, خبردار سنو آگاہ رہو. یہ سارے ترجمے ہیں اس کے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو خود مفسد ہیں, یعنی ان کے اس رویے کی وجہ سے زمین کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے. جب کافر کفر کرتا ہے تو زمین کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے, ہے نا, اور جب منافق جو ہے وہ منافقت اختیار کرتا ہے, دو لباس پہنتا ہے, تو زمین کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, فساد پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم قیامت کے دن بدترین آدمی اس شخص کو پاؤ گے جو دنیا میں دو چہرے رکھتا تھا, کچھ لوگوں سے ایک چہرے کے ساتھ ملتا تھا اور دوسرے لوگوں سے دوسرے چہرے کے ساتھ. اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے, متفق علیہ, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. یعنی دونوں حدیث کے مجموعوں میں جو سب سے اتھینٹک احادیث ہیں کے مجموعے ہیں بخاری اور مسلم کا, تو وہ اسے جو وہ اس کو روایت کرتی ہیں کہ دو چہرے رکھنے والا. اور ہم میں صرف بعض لوگ جو ہیں اپنے لباس کے بارے میں, اپنی گفتار کے بارے میں, یا بعض اوقات نا ہم کسی بڑے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کوئی چیئر پرسن ہے, کرسی والا ہے, عہدے والا ہے, اس سے جب ملتے ہیں تو جی جی کرتے ہیں, ہاں بالکل صحیح ایسے ہی. جب ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ تو نہیں, نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. یعنی ایک کمٹمنٹ کر کے نا, بڑے لوگوں کے سامنے ایک کمٹمنٹ کر لیتے ہیں, جب عام لائف میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ تو ایسے ہی نکل گیا ہوگا منہ سے, نہیں نہیں میرا یہ مطلب تو نہیں تھا, ایسا تو نہیں ہو سکتا, ہے نا. تو یہ بھی دو چہرے ہیں انسان کے. اسی طرح سے جو ہے ہم اپنے لباس کے بارے میں کہ ہم مختلف لباس اختیار کرتے ہیں, تو یہ بھی دو چہرے ہیں. مختلف لباس اختیار کرنا, سمجھتی ہیں نا آپ بات کو, تو ایسا نہیں ہے جو قسمت نصیب میں رزق ہے وہ تو ملنا ہی ہے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ جاب کے لیے سکارف نہیں ہمیں پہن رہی, ہے نا, یا یہ کہ مسجد آئے تو جلباب پہن لیا, نکلے تو جلباب نہیں, ہے نا, ختم باہر. تو بہرحال اور بھی ہم بعض محفلوں میں ڈیفرنٹ اپنا سیٹ اپ رکھتے ہیں اور بعض محفلوں میں جاتے ہیں تو ڈیفرنٹ سیٹ اپ رکھتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ جو دنیا سے ڈرا وہ مرا, جو دنیا سے ڈرا وہ گیا. بس اللہ کا ڈر مجھے اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے, اور ہمیں اللہ یہ محسوس کرنا چاہیے کہ میں اللہ کی نظروں میں جو ہوں وہ کیسی ہوں. پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ کیا کہا کہ انہیں شعور نہیں ہے نا. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ ان کو بہت اچھا انسان بنانا چاہتی ہیں, آپ نے ان کو گھر کے اندر کچھ ایٹیکیٹس بتائے ہیں, اصول اور طور طریقے بتائے ہیں, کچھ اصول اور ضابطے بتائے ہیں, کچھ ادب اور آداب بتائے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اسی میں ان کی بہتری ہے ان دی لانگ رن. آج نہیں کل ان کو پتا چلے گا یہ بڑی اچھی چیزیں تھی جو میرے ماں باپ نے مجھے سکھائی. پر بچے ہیں کہ سمجھ کے ہی نہیں دیتے, بچے ہیں کہ مان کے ہی نہیں دیتے. یعنی جیسے مثلا کمپیوٹر کا غلط استعمال یا زیادہ استعمال, یا انٹرنیٹ کا غلط استعمال یا زیادہ استعمال, تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ فزیکل اس کے افیکٹس کیا ہیں. اب اگر ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ اس سے تمہاری, یعنی ریسرچ سے یہ آ رہا ہے کہ کمر کی جو ہڈیاں ہیں نا, یہ کندھے کی, یہ خراب جلدی ہو جاتی ہیں جو زیادہ اس طرح اکڑو بیٹھے رہتے ہیں, اور جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر ریز ایسی آتی ہیں جس سے بینائی متاثر ہوتی ہے, بصارت متاثر ہوتی ہے. اچھا جیسے ایک بچہ جو ہے وہ کہنے لگا کہ میں نے نا کمپیوٹر, اس کو بہت آتا ہے اور کمپیوٹر کو چھوڑتا نہیں ہے, لیکن کہنے لگا کہ میں کمپیوٹر ان دی لانگ رن اپنے پروفیشن میں نہیں اختیار کرنا چاہتا. میں نے پوچھا کیوں, کہنے لگا کہ اس لیے کہ یہ کندھے خراب ہو جاتے ہیں اور ہڈیاں خراب ہو جاتی ہیں اور یہ نظر وغیرہ کا اثر. تو سائنس جس کو چیز کو ڈاکٹری پروو کر دے وہ تو ہم ماننے کو تیار, اور وقت کا غلط استعمال, غلط سائٹ میں چلے جانا, اس سے جو اخلاق اور کردار کو زوال آتا ہے, اخلاق اور کردار متاثر ہوتا ہے, تو یہ کیسے پتا چلتا ہے, یہ والدین بتاتے ہیں بچے لیکن مان کے نہیں دیتے. تو ایسے میں دلوں میں سے ایک تیس سی اٹھتی ہے, ایک درد سا اٹھتا ہے, چبھن سی ہوتی ہے, اور ماں واویلا کرتی ہے اور شور کرتی ہے کہ افسوس کہ اسے شعور نہیں ہے کہ یہ غلط کام جو ہے وہ کر رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ انہیں شعور نہیں ہے, اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, ایمان لے آؤ, کما آمَنَ النَّاسُ, جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں, یعنی اور مسلمان جو سچے مسلمان ہیں جو قربانیاں کر رہے ہیں, بے شک انہیں تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں, بے شک انہیں مارا جا رہا ہے, انہیں جاب سے نکالا جا رہا ہے, ان کو پیٹا جا رہا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, तो ये लोग क्या कहते हैं, कौलू अनुमिनु कमा आमना सुफहा। क्या हम बेवकूफों की तरह ईमान ले आए? जैसे आज के दौर में भी जो ईमान वाले लोग हैं ना, जो हर जगह अपना एक ही अंदाज रखते हैं, लोग उनको फुलिश कहते हैं, सिली पीपल कहते हैं कि इनको कोई समझ नहीं है, ये नहीं कामयाब हो सकते। जैसे हमारी एक बहन दोस्तों में से, उन्होंने एक जो है वो स्टोर शुरू किया, मैक स्टोर, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसमें ये जो है वो हराम चीज कोई नहीं रखनी, मैंने इसमें लॉटरी नहीं रखनी। तो क्या कि इंसान सोचता है कि लॉटरी नहीं तो ये स्टोर कैसे चलेगा? अगर इसमें ये हम चीज नहीं रखेंगे तो हमारा पिज्जा कैसे चलेगा, जब तक कि उसके अंदर जो है वो पिक का गोश्त या उस मिक्स ही चीजें जो है नहीं होंगी, तो हम कहते हैं हमारी तजारत ही नहीं चल सकती। और जो इस पर जोर देते हैं कि ऐसी जगह जॉब नहीं करना चाहते, लोग कहते हैं बेवकूफ, भूखे मरेंगे, खुद ही करना शुरू कर देंगे, खुद ही खाना शुरू कर देंगे, है ना? तो आज भी दुनिया कहती है और कल भी दुनिया कहती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बस किरदार बदल गए हैं, कहने कहने और करने वाले लोग बदल गए हैं। कहते हैं कि ये लोग तो बेवकूफ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अल्लाह खबरदार, बेशक यही बेवकूफ है, इन्नहुम हुमु सुफहाउ वलाकिल्ला यालमून। इन्हें इल्म ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है, ये जानते ही नहीं है कि अल्लाह क्या है और आखरत क्या है और ईमान क्या है और अमल क्या है, ये जानते ही नहीं है। वाइजा लकुल्लजीन आमनू, और जब ये मिलते हैं ईमान वाले लोगों से, कालू आमन्ना, तो कहते हैं कि हम ईमान लाए। वाइजा खलू इला शयातीनहिम, और जब ये खाली हो जाते हैं अपने शैतानों के पास, यानी अपने शैतानों से अलैदगी में मिलते हैं, अपने उन लोगों से मिलते हैं जिनके अंदर शैतानी सिफात पाई जाती हैं, तो क्या कहते हैं, कौलू इन्ना माकुम, कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, हम तो मजाक उड़ा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अल्लाहु यस्तहजिऊ बिहिम, अल्लाह इनसे मजाक करता है, अल्लाह इनके से मजाक कर रहा है। अल्लाह कैसे मजाक कर रहा है, फयमुद्दुहुम फी तुगयानिहिम यअमहून, अल्लाह इनकी रस्सी को दराज कर रहा है। इन्हें ये सरकशी कर रहे हैं, ये नाफरमानी कर रहे हैं, ये इनकार कर रहे हैं, ये मुनाफकत इख्तियार कर रहे हैं, अल्लाह इनको कुछ नहीं कह रहा, इनको खाने को रिज्क दे रहा है, पहनने को कपड़ा दे रहा है, इन इनकी इनको जो है ना, इनकी जो जान है उसको निकाल नहीं रहा, इनका गला दबा नहीं रहा, बल्कि क्या है कि इनको मोहलत अभी दी हुई है, ये इनकी रस्सी को दराज किया हुआ है। ये है अल्लाह का मजाक, और ये समझ रहे हैं कि दुनिया ज्यादा मिल रही है, तरक्की ज्यादा हो रही है, हराम कामों की वजह से मुझे फायदे ज्यादा हो रहे हैं और बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो ये समझते हैं कि हम अकलमंद लोग हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, ये बात याद रखना कि ये लोग हैं बेवकूफ, अल्लाह इनसे मजाक कर रहा है, इनकी रस्सी को दराज किया हुआ है इनकी सरकशी में, कि ये और ज्यादा गुनाह करें, ये और नाफरमानियों में बढ़े, या महून अंधे भटकते फिरे। अंधापन, हमने पढ़ा ना आयन मीम हा, के ये वो लोग हैं जो कि इसी तरह जो है ये अपने नाफरमानियों में, अंधेपन में जो है ये बढ़ते चले जाएंगे। तो ये अल्लाह का इनसे मजाक है कि अल्लाह ताला ने इनको इनके हाल के ऊपर जो है वो छोड़ दिया है, ये अपनी सरकशी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहां पर ये शयातीन का लफ्ज मक्का के सरदारों के लिए इस्तेमाल हुआ है, मुनाफिकों के सरदारों के लिए, या उन तमाम लोगों के लिए जो कि सरकशी इख्तियार करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि उलाइकल्लज़ीना, ये वो लोग हैं कि इन्होंने इस तरह वद्दलालत बिल हुदा, कि इन्होंने हदायत के बदले गुमराही को खरीद लिया, इन्होंने हदायत को बेचा और गुमराही को खरीदा है। ये कैसे लोग हैं कि इन्होंने हदायत की बजाय गुमराही ले ली, जैसे कोई समंदर के किनारे जाए और हीरे हीरों की बजाय वो धूल के अंदर जो सीपें पड़ी हुई उन्हीं को इकट्ठा करते रहे, क्योंकि साहिल के किनारे पर पानी की लहरें सीपों को खुद ही फेंक देती हैं, है ना? लेकिन मोती और लाल लेने के लिए समंदर की गहराई में जाना पड़ता है, और जब समंदर की गहराई में उतरते हैं तो पानी में भी पानी में उतरते हैं, मुश्किलात उठानी पड़ती हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स जो है वो कोयले ही लेकर खुश हो जाए, क्या फरमाया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीद ली, कमा रबहत तिजारतहुम, इनकी तिजारत ने इन्हें कोई नफा ना दिया। रबीहा वो नफा है, वो प्रॉफिट है जो तिजारत से मिलता है, तो इनकी तिजारत ने इन्हें कोई नफा ना दिया। वमा कानू मुहतदीन, और ये लोग जो हैं ये हदायत पर नहीं है। यहां पर इन आयात में अल्लाह ताला ने बहुत ही अफसोस का इजहार किया है, बड़ा ही जो है वो इस बात का इजहार किया है कि ये लोग जो हैं ये बहुत ही ज्यादा जो है ये खसारे में हैं। और आप देख लें कि आज हम बजाहिर दुनिया में फायदे उठाने के लिए ही तो बाज़ औक़ात जो है वो हराम काम करते हैं, बाज़ औक़ात जो है वो हया के दामन को तार तार कर देते हैं, हदों को तोड़ते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि इससे हमें फायदा होगा, हमें जैसे जो कारोबार है उसमें नुकसान से बचने के लिए जैसे मिक्स कर देते हैं गीले को सूखे के साथ, तो ये भी मिलावट है, ये भी नुकसान है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं कि इन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीदी, मगर ये तिजारत इनके किसी काम ना आई, और यही वो लोग हैं जो कि हदायत पर नहीं है। यानी ऐसे लोग कितना ही अपने आप को मुसलमान कहें लेकिन ये मुसलमान नहीं है, वो कितना ही कहे कि हम ईमान लाए हैं ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो सच्चे ईमान लाने वाले कौन हैं कि जिस चीज पर ईमान लाए हैं उनका अमल उसकी सदाकत की गवाही दे, उनकी गुफ्तगू उसकी सदाकत की गवाही दे, उनका चलना फिरना उसकी गवाही दे, उनके सुबह शाम उनका उठना बैठना उनका सब कुछ। के कुल अमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तकिम, कह के मैं ईमान लाया और फिर उस पर डट जा। तो ये आयात हमें बता रही हैं कि जिस दीन पर जिस रब पर हम ईमान लाए हैं हमें उसके ऊपर डट जाना चाहिए। फमा अलैना इल्लल बलाग।